सुबह का टाइम था। बीते पूरे दिन पूरा दिन साथ बिताने के बाद आज इनाया और कायरव को अपने अपने काम के लिए निकलना था और इनाया की किटी पार्टी में भी जाना था, जहां क्या होने वाला था वो भी नहीं जानती थी। इनाया रेडी हो रही थी, थी तो वहीं लेकिन ध्यान शायद कहीं और था, इसीलिए उसे कायरव के वहां होने का एहसास तक नहीं हुआ था। कायरव जो उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आया था, उसे यूं खुद में खोए उलझे बालों में कॉम घुमाते देख पीछे ही रुक गया और गहरी निगाहों से उसे देखने लगा। कुछ देर बाद वो धीमे कदमों से उसके तरफ बढ़ने लगा। उसकी मौजूदगी से पूरी तरह अनजान इनाया अब भी किन्हीं ख्यालों में खोई थी। अचानक उसे अपने पेट पर किसी चीज के फिसलने का एहसास हुआ और वो चिहुकते हुए अपने ख्यालों से बाहर आई। नजरें मिरर की तरफ उठी और निगाहें पीछे खड़े कायरव के चेहरे पर ठहर गईं। कायरव ने उसकी कमर पर बांह लपेटते हुए उसे खुद से सटाया और उसके कंधे पर अपनी चिन टिकाकर गहरी निगाहों से उसे देखने लगा। इनाया को उसका यूं देखना जरा अजीब लगा। वो आंखें बड़ी बड़ी करके कन्फ्यूज निगाहों से उसे देखने लगी। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं नहीं रहा, तुम्हारे चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, कायरव ने उसी तरह उसे देखते हुए जवाब दिया। इनाया चौंकी और हैरानगी से बोली, मेरा चेहरा? क्या तुम्हें कोई किताब लगता है जो तुम उसे पढ़ने की कोशिश कर रहे थे? आंखों को दिल का आईना कहा जाता था। मैं तुम्हारी इन आंखों को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये जान सकूं कि इस वक्त तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, कायरव ने मिरर से उसकी आंखों में झांकते हुए संजीदगी से जवाब दिया। मेरे दिल में तो कुछ भी नहीं चल रहा, फिर तुम क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हो? सच में कुछ भी नहीं चल रहा? अगर ये सच है तो बताओ, जब मैं यहाँ आया तब तुम क्या सोच रही थी? क्या चल रहा था तुम्हारे दिमाग में कि तुम्हें मेरे आने का पता तक नहीं चला? कायरव अब भी उसकी आंखों में झांक रहा था। पल भर को इनाया के एक्सप्रेशन बदले, फिर वो उसके तरफ पलट गई और सर उठाकर उसे देखने लगी। मैं सोच रही थी कि आज किटी पार्टी के लिए मुझे क्या पहनना चाहिए, उसमें सब कैसे और किस तरह के कपड़े पहन कर आएंगे, मुझे भी उनके जैसा दिखना होगा ना, लेकिन मुझे इन सब का कोई आइडिया ही नहीं है। इनाया के छोटे से मासूम चेहरे पर परेशानी झलकने लगी। कायरव ने प्यार से उसके गाल को छूकर कहा, तुम्हें किसी की तरह दिखने, किसी को कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी अपनी यूनिकनेस है जो तुम्हें औरों से अलग करती है, बस उसे बनाकर रखना। कैजुअल घर में पहनने वाले कपड़ों की जगह तुम कुछ भी वेयर कर सकती हो, लेकिन ध्यान रखना जिसमें कंफर्टेबल हो, कॉन्फिडेंटली लोगों को डील कर सको वही पहनना। थोड़ा रेडी हो जाना, ओवर नहीं बस नॉर्मल, दैट्स इट, ओके? इनाया की तो जैसे सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा, उसने झट से सर हिलाया, ओके एंड थैंक यू सो मच। इनाया ने अपने होठों से उसके गाल को छू दिया। कायरव मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में वो बात नहीं थी। इनाया, तुम श्योर हो कि तुम इस पार्टी में जाओगी? मैं वहां नहीं होऊंगा। तुम इन हाई सोसाइटी की लेडीज को जानती नहीं हो, तुम्हारे लिए उन्हें हैंडल करना बहुत मुश्किल होगा। कायरव की इनाया की फिक्र थी, वो नहीं चाहता था कि उसे किसी की बातें या ताने सुनने पड़े। इनाया सब समझ रही थी। उसका प्यार और परवाह देखकर वो मुस्कुराई, उसके पैरों पर अपने पैर रखे, गर्दन में बाहों का हार डाला और उसे प्यार से देखते हुए मुस्कुराई। तुम्हें अपनी बीवी की काबिलियत का शक है? शक नहीं, फिक्र है, क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। जिस तरह मैंने तुमसे शादी की है, अभी जो सीन चल रहा था वो एक मौका नहीं छोड़ेंगे तुम्हें नीचा दिखाने का। शायद सिया की मॉम भी वहां हो। तो क्या हुआ, जिसे आना है आने दो, मैं सबको संभाल लूंगी। तुम टेंशन मत लो, मैं किसी को भी मुझे नीचा दिखाकर तुम्हारी इंसल्ट करने का मौका नहीं दूंगी। मैं कायरव रायचंद की वाइफ है, तुम्हारी इमेज और रेपुटेशन का ख्याल रखूंगी। इनके साथ मेरी इन अमानत का भी ख्याल रखना, ओके? कायरव ने प्यार से उसके गाल को छुआ। इनाया ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। वहां किसी से ज्यादा फालतू मत बोलना, अगर बात करे तभी जवाब देना। बेवजह किसी से उलझने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा शांत रहने की कोशिश करना, लेकिन इतना भी मत सहना कि वो तुम्हें वीक समझकर दबाने की कोशिश करने लगे। याद रखना, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारे हाथ में है। अगर बात तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आए तो जवाब देगा, आगे जो होगा मैं देख लूंगा, ओके? कायरव समझा रहा था और इनाया मुस्कुराई जा रही थी, जब कायरव ने ये देखा और भौं से कोड़कर उसे घूरने लगा। मैं यहाँ तुम्हें इतनी इंपॉर्टेंट बातें समझा रहा हूँ और तुम मुस्कुरा रही हो, तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? नहीं तो, इनाया ने तुरंत इनकार में सर हिलाया, मैं तो तुम्हारी बातों को बहुत सीरियसली ले रही हूँ और ध्यान से सुन भी रही हूँ। अच्छा, तुम मुस्कुरा क्यों रही थी? वो तुम्हें इसीलिए मुस्कुरा रही थी क्योंकि तुम मुझे ऐसे समझा रहे थे जैसे जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तब उसके बाबा समझाते हैं। मैं अब बच्ची नहीं हूँ, हर सिचुएशन को डील कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारा यूं कंसर्न दिखाना अच्छा लगा। मेरे बाबा ने कभी मुझे ये बातें नहीं कही, कभी मुझे नहीं समझाया, मेरी हिम्मत नहीं बढ़ाई, मुझे ये विश्वास नहीं दिलाया कि वो है मेरे साथ, लेकिन तुम मेरी लाइफ की हर कमी पूरी कर देते हो, जैसे अभी की। तुम्हारा ये कहना कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ूं, आगे जो होगा तुम देख लोगे, मेरे लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट है जो सबको नहीं मिलता। मुझे अपने बाबा से कभी नहीं मिला, लेकिन तुमसे मिल रहा है क्योंकि मैं बहुत लकी हूँ। इनाया मुस्कुरा रही थी, वो खुश थी, बेहद खुश थी। उसकी बातें सुनकर कायरव मुस्कुराया और उसके सर पर हाथ रखकर हल्के से उसके बालों को सहला दिया। याद रखना मेरी बातें। मैं सब याद रखूंगी और कोई गड़बड़ भी नहीं करूंगी, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। वो तो थोड़ा मुश्किल है, टेंशन तो मुझे तुम्हारी रहेगी ही, बस तुम अपना ख्याल रखना, मैं शाम को जल्दी आने की कोशिश करूंगा। इनाया ने सर हिलाया, फिर कायरव से दूर हुई और रेडी होने लगी। कुछ देर बाद दोनों ने साथ में नाश्ता किया। उसके बाद कायरव ने इनाया को होटल ड्रॉप किया और खुद ऑफिस के लिए निकल गया। मिस्टर शेरगिल ने मानव को मारने की धमकी देकर नित्या को साथ चलने के लिए मजबूर तो कर लिया था, वो थोड़ी डरी सहमी भी थी, लेकिन नाराज इतनी थी कि पूरे रास्ते में उसने एक बार भी उन्हें नहीं देखा, वो भी मोबाइल में खुद को बिजी दिखा रहे थे। कार एक बड़े से गेट से होते हुए अंदर पोर्टिको में जाकर रुकी। वो बड़ा सा आलिशान बंगला किसी राजमहल से कम नहीं लग रहा था। कार रुकी, गार्ड्स ने आकर दरवाजा खोला, मिस्टर शेरगिल बाहर निकले। उनके कहने पर नित्या भी बाहर निकली और सूनी निगाहों से उस मेंशन को देखा। मिस्टर शेरगिल ने उसका हाथ पकड़ा और अंदर लेकर जाने लगे। नित्या ने कोई विरोध भी नहीं किया, चुपचाप उनके साथ चलती गई। आसपास मौजूद गार्ड, सर्वेंट सब उन्हें ही देख रहे थे। सबके चेहरों पर डर, चिंता, फिक्र जैसे भाव मौजूद थे। मिस्टर शेरगिल नित्या को सीढ़ियों से चढ़ते हुए एक रूम में लेकर आए और झटके से अंदर धकेलते हुए उसे छोड़ दिया। नित्या गिरते गिरते बची, किसी तरह उसने खुद को संभाला। किससे पूछकर तुमने इतना बड़ा कदम उठाया, मिस्टर शेरगिल गुस्से से चीखे। नित्या सहम गई, डर से उसका नाजुक वजूद कांप गया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि सर उठाकर उन्हें देख ले। उसकी चुप्पी मिस्टर शेरगिल के गुस्से को भड़का गई, उन्होंने जबड़े भींच किए। नित्या, कुछ पूछ रहा हूँ मैं, किससे पूछकर तुमने घर छोड़ने जितना बड़ा कदम उठाया, क्या सोचकर तुम घर से भागी, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ऐसा करने की। नित्या अब भी किसी गुनाहगार जैसे उनके सामने सर झुकाई चुप सी खड़ी थी। मिस्टर शेरगिल का गुस्सा सारी लिमिट्स क्रॉस करने लगा, लेकिन जब उनकी नज़र नित्या के डर से कांपते वजूद पर गई तो उन्होंने अपनी मुट्ठियों को भींच लिया, भाव मसलते हुए चेहरा फेर लिया। गहरी गहरी सांसें लेते हुए गुस्सा थोड़ा शांत किया और वापस नित्या की तरफ पलटे। वो अभी भी सर झुकाए खुद में सिमटी हुई सी खड़ी थी।
To be continued.